नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्रोताओ, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से फिलिप्पियों नामक पत्री का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आध्यात्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
प्रभु तेरा प्यार सारे जहां में हो, प्रभु तेरा नाम सारे दिलों में हो, प्रभु तेरा प्यार सारे जहां में हो, प्रभु तेरा नाम से बदल ही गया जीवन, कांटों से भरी राहें थी मेरी, तेरे शरण में हुआ मैं पावन, तेरे आने से तुझे पाने से बदल ही गया जीवन, कांटों से भरी राहें थी मेरी, तेरे शरण में हुआ मैं पावन, जीऊंगा तेरे लिए, जान भी दूंगा तेरे लिए, प्रभु तेरा प्यार सारे जहां में हो, प्रभु तेरा नाम सारे दिलों में हो। भटकों को तेरी राह दिखलाऊं, अपनों के लिए तूने क्या सहा मैं ये समझाऊं, वादा ये रहा भूले भटकों को तेरी राह दिखलाऊं, अपनों के लिए तूने क्या सहा मैं ये समझाऊं, प्रभु तेरा नाम।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब परमेश्वर की निकटता में रहते हुए कुशल पूर्वक हैं और फिर से आज अपने नए मित्रों के साथ परमेश्वर के वचन को सुनने और उसमें से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम इन दिनों नए नियम की पुस्तक में से फिलिपियों की पत्री नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस पुस्तक का लेखक पौलुस प्रेरित है, जो कैद में रहते हुए, बंदी गृह में रहते हुए उसने फिलिपी की मंडली अर्थात कलीसिया के लोगों को यह पत्र लिखा, क्योंकि वह उनसे प्रेम करता था और कलीसिया भी उससे प्रेम करती थी। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा और बड़ाई करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि हम आपके जीवित और सामर्थ्य वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए, ताकि एक एक जीवन जो आपके वचन को सुनता है समझ सके, ग्रहण कर सके और उसके अनुसार चल सके। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए भी है जो बीमार हैं, जो निराश हैं, जो परेशान हैं या किसी न किसी रूप से दबाव में हैं। आप उनके साथ होइए, उन्हें अपनी शांति और आनंद प्रदान कीजिए, ताकि आज का वचन उनके जीवन के लिए भी आशीष का कारण बन जाए। धन्यवाद देते हैं हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, पौलुस कहता है कि आप प्रेम तो करें परंतु विवेक और ज्ञान से। अब वह एक और महत्वपूर्ण बात कहता है जिसे हम फिलिपियों की पत्री 1:10 में पढ़ते हैं। कृपया आप निकाल लीजिए फिलिपियों की पत्री 1:10। यहाँ पर लिखा है, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर न खाओ। यह एक और पद है जिसकी व्याख्या करना आवश्यक है। तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो। पौलुस के कहने का अर्थ है अंतर पहचानो, और मेरे विचार में यह आपके जीवन में प्रभु की इच्छा से संबंधित है। जी हाँ, हमारे जीवन में ऐसे समय आते हैं जब हमारे सामने 2 या 3 मार्ग होते हैं और हमें एक मार्ग चुनना होता है कि कौन सा मार्ग लें। परमेश्वर न तो स्वर्गदूत भेजकर आपको बताएगा और न ही लाल और हरी बत्ती दिखाकर आपको संकेत करेगा। वह हमसे आशा करता है कि हम समर्पित जोश प्रकट करें। अतः हमें अंतर पहचानने का प्रयास करना है। आज हमारे बहुत से जवान भाई बहन अपने जीवन के ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं कि उन्हें पता नहीं होता है कि किस ओर आगे बढ़ना है, और यही कारण है कि वे गलत चुनाव कर बैठते हैं और अपने जीवन में निराश और हताश हो जाते हैं। यहाँ तक कि माता पिता भी उनका साथ नहीं दे पाते हैं। आज यह वचन उन भाई बहनों के लिए भी है कि वे परमेश्वर की ओर अपने आप को लाएं, ताकि परमेश्वर की सहायता पाकर उस जोश को प्रकट करें और सही निर्णय को लेने पाएं। मेरे मित्रों, मुझे एक बार एक व्यक्ति अपने व्यापार के विषय में बता रहा था कि उसके सामने 2 मार्ग खुले हैं। उसने प्रार्थना की कि क्या निर्णय लें। उसने एक मार्ग चुना और वह सफल नहीं हुआ। वह फिर उसी चौराहे पर आ गया, दूसरा मार्ग अपनाया। उसने कहा, इस बार मैं परमेश्वर की इच्छा के बारे में आश्वस्त हुआ। एक मार्ग में मैं सफल हुआ और एक मार्ग में नहीं। परमेश्वर कहता है कि हमें अलग अलग बातों को करके देखना है। परमेश्वर हमें इसी प्रकार लेकर के चलता है। वचन में लिखा है, सच्चे बने रहो। सच्चे का यहाँ मूल अर्थ है कि आप चूके नहीं। रोमी बहुत शक्तिशाली और निर्दयी लोग थे। उन्होंने यूनान की कला के खजाने नष्ट किए थे। एशिया माइनर के क्षेत्रों में आप इस विनाश का प्रमाण आज भी देख सकते हैं। मैंने वहां अनेक मंदिरों को देखा है जो तस्वीर में हैं। डायना का मंदिर वास्तुकला के दृष्टिकोण से एक भव्य रचना था। उन्होंने यूनान की कला को पहले तो बहुत हानि पहुंचाई, परंतु जब उन्होंने सांस्कृतिक विकास आरंभ किया तब इनका मूल्य पहचान कर उनका संग्रह भी आरंभ किया। परंतु उनमें से अनेक कलाकृतियां नष्ट की जा चुकी थी और कलाकार उनमें मोम भरकर उस दोष को ऐसा छिपा देते थे कि देखने वाला उसे पकड़ ना पाए। इस प्रकार वे उसे अछूता दर्शाकर बेच रहे थे, परंतु जब वह उसे लेकर बाहर निकलता था तो गर्मी से वह मोम पिघलने लगता था। अतः प्रतिष्ठित व्यापारी अपने सामान पर ईमानदार अर्थात सच्चा लिखा करते थे। इसका अर्थ था उसमें मोम नहीं है। दूसरे शब्दों में वे गारंटी लेते थे कि उनका माल सिद्ध है। अतः पौलुस कहता है कि दिखावा ना करें, सच्चे बने अर्थात जय मसीह की हालेलुया का जाप करते हुए आप ना फिरें। यदि आप उनकी पीठ में छुरी मारना चाहते हैं तो उनसे प्रेम करने का नाटक ना करें, परंतु सच्चे बने। लिखा है वचन में कि ठोकर ना खाओ अर्थात निर्दोष, क्योंकि निर्दोष रहे बिना हम मसीही जीवन नहीं जी सकते और न ही परमेश्वर के वचन का प्रचार कर सकते हैं। आपको स्मरण रखना है कि पौलुस और उसके प्रचार के कारण लोग ठोकर खाते थे। यही कारण है कि हमें अपने पास्टर के लिए प्रार्थना करना है जब वह वचन का प्रचार करता है, जब वह प्रभु की सेवा में आगे बढ़ता है। यदि वह सच में परमेश्वर का वचन सुना रहा है तो ठोकर तो अवश्य ही लगेगी। उसे आपके सहयोग की आवश्यकता है, आपकी सुरक्षा की आवश्यकता है, आपकी प्रार्थना की आवश्यकता है। आज कलीसिया पासवानों को कई दोष जड़ देते हैं, परंतु इस बात को भूल जाते हैं कि वह एक प्रभु का दास है और उसे भी आपकी प्रार्थना की, आपकी सुरक्षा की आवश्यकता है। मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं एक सिनेमा सितारे का दफन के बारे में पढ़ रहा था। वहां मैंने जो वचन सुना उसे उपस्थित गण ने स्वीकार नहीं किया। मुझे कुछ लोगों ने फोन भी किया। एक टीवी संवाददाता ने टीवी पर उसका दफन संस्कार को दिखाते हुए कहा, हॉलीवुड ने आज वह सुना जो पहले कभी नहीं सुना था। मुझे ऐसा लगा कि वह विश्वासी था। मेरा संदेश अधिकांश लोगों के लिए ठोकर का कारण था। अतः आप देखते हैं कि परमेश्वर का वचन ठोकर का कारण है। पौलुस कहता है कि विश्वासियों को निर्दोष होना है। जी हाँ, आज आप यदि अपने आप को विश्वासी कहते हैं तो आपके लिए भी चाहिए कि आप निर्दोष बने। मुझसे एक बार किसी प्रसिद्ध प्रचारक ने पूछा कि मुझे कलीसिया के अंदर सेवा कैसे लग रही है। मैंने कहा, मुझे बड़ा आनंद आ रहा है और यह एक बहुमूल्य अवसर था। अनेक जन आराधना में आ रहे हैं, परंतु मैं जो अपने बारे में सुन रहा हूं उससे बचाव करना मेरे लिए असंभव है। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, बस एक बात का ध्यान रखना कि उनमें से एक भी बात सच ना हो। हम निर्दोष तो रह सकते हैं, परंतु आक्रमण से नहीं बच सकते। मेरे मित्रों, आज मुझे और आपको कितना अधिक सचेत रहने की आवश्यकता है। आगे हम पढ़ते हैं वचन में, पौलुस कहता है, मसीह के दिन उसका पुनः आगमन जब वह अपनों को पृथ्वी से उठा लेगा। यहाँ विश्वासियों का उठाया जाना दूसरी बार व्यक्त किया गया है। परमेश्वर की संतान को मसीह के कभी भी आ जाने के लिए तैयार रहना है। लेकिन दुख की बात तो यह है कि प्रभु के लोग कहे जाने वाले आज भी अपने जीवन को उसी प्रकार जी रहे हैं जैसा वे जीना चाहते हैं। परमेश्वर के वचन के अनुसार वे अपने आप को नहीं ढाल पा रहे हैं और यही कारण है कि आज मसीह का प्रेम ठीक तरीके से नहीं फैल पा रहा है। मेरे प्रियो, पौलुस कहता है फिलिपियों की पत्री 1:11 में, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, धार्मिकता के फल ये पवित्र आत्मा के फल हैं। पवित्र आत्मा विश्वासियों के जीवन में फल उत्पन्न करता है। हम गलातियों की पत्री 5:22-23 में पढ़ते हैं, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। जी हाँ, हम इसे आत्मा का फल कहते हैं। यदि ये हमारे जीवन में नहीं है तो हमें चाहिए कि हमारे अंदर में ये फल उत्पन्न हो। जंजीरें और कष्ट सुसमाचार को बढ़ावा देते हैं। पौलुस कहता है फिलिपियों की पत्री 1:12 में, हे भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है। पौलुस बहुत ही अधिक भावात्मक रूप से कह रहा है, फिलिपी के विश्वासियों को पौलुस के बंदी बनाए जाने का समाचार मिलते ही उन्होंने अपने पास्टर इपफ्रोदीतुस को उसके पास भेजा। और तब हम देखते हैं, भाई पौलुस, हम आपके लिए बहुत दुखी हैं। आपकी सेवकाई में बाधा आ गई है। आपके जेल जाने के कारण सुसमाचार प्रचार रुक गया है। पौलुस कहता है, मैं तुम लोगों को बता देना चाहता हूं कि सुसमाचार का प्रचार रुका नहीं है। मेरे साथ जो हुआ है वह सुसमाचार को बढ़ावा देगा। अब वह अपनी बात को स्पष्ट करेगा। फिलिपियों की पत्री 1:13 में आगे हम पढ़ते हैं, लिखा है, यहां तक कि कैसर के राजभवन की सारी पलटन और शेष सब लोगों में यह प्रकट हो गया है कि मैं मसीह के लिए कैद हूं। यहां पर सुनिए, कहता है राजभवन अर्थात कैसर, जो राजा का दरबार है। प्रेरितों के काम 28:16 में लिखा है, जब हम रोम पहुंचे तो पौलुस को एक सैनिक के साथ जो उसकी रखवाली करता था अकेले रहने की आज्ञा मिल गई। पौलुस को एक सैनिक के साथ जंजीर से बांधा गया था। वह राजा के घराने का ही एक सदस्य था। मेरे मित्रों, पौलुस के मन परिवर्तन के समय प्रभु यीशु ने कहा था कि पौलुस प्रभु का नाम अन्य जातियों में, राजाओं में और इसराइल के वंशजों में प्रचार करेगा। इसे आप प्रेरितों के काम 9:15 में पढ़ सकते हैं। अब तक तो पौलुस रोमी साम्राज्य में साधारण लोगों में सुसमाचार प्रचार कर रहा था, और अब उसके पास राजसी परिवार के सदस्य उसके साथ जंजीर में बंधे थे। प्रति 4 घंटे एक सुरक्षाकर्मी बदलता था। यह एक नियम था। आज भी जब कोई मुख्यमंत्री कहीं पर जाता है किसी भी सभा में, तो उसके जो भी सुरक्षाकर्मी होते हैं हर एक 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 घंटे में या आधे घंटे में बदलते रहते हैं। इसी प्रकार पौलुस के साथ भी हो रहा था। क्या पौलुस इन 4 घंटों में चुपचाप रहता होगा? अब आप कल्पना करें कि आपकी कलीसिया आपसे जंजीरों द्वारा बंधी है। मुझे ऐसा लगता है कि उनमें से कुछ तो दूसरे कर्मी को आता देख खुश होते होंगे, अच्छा है वह आ रहा है, या पौलुस तो मुझे यीशु का अनुयायी बनाने में लगा हुआ है। उनमें से कुछ ने तो प्रभु यीशु को ग्रहण कर लिया होगा। सुसमाचार राजा के परिवार में प्रवेश कर चुका था। टर्टलियन ने लिखा है कि अधिकारी पदों पर मसीही विश्वासियों को देखकर रोमी सरकार परेशान थी। इनमें से अनेक जन मसीह यीशु को ग्रहण करने के कारण मारे गए थे। उन्होंने अपने जीवन को बलिदान किया था। मेरे प्रिय मित्रों, यहां पहली बार पौलुस कह रहा है कि उसका बंदी बनाया जाना सुसमाचार के लिए रुकावट नहीं है, बढ़ती का कारण है। क्योंकि सुसमाचार राजमहल में पहुंच गया था। यहाँ पर इतना ही नहीं कि पौलुस के बंदी बनने से सुसमाचार राजमहल में पहुंचा, परंतु कुछ और भी हुआ। हम फिलिपियों की पत्री 1:14 में पढ़ते हैं, जहां पर पौलुस कहता है, और प्रभु में जो भाई हैं उनमें से अधिकांश मेरे कैद होने के कारण हियाव बांधकर परमेश्वर का वचन निधड़क सुनाने का और भी साहस करते हैं। मेरे मित्रों, यह क्या ही साहसिक वचन है। आरंभिक कलीसिया में अनेक विश्वासी मसीह के लिए गवाही देने बाहर जाना चाहते थे, परंतु पौलुस की बात सुनकर उन्होंने सोचा होगा, मैं प्रभु यीशु की गवाही तो देना चाहता हूँ, परंतु पौलुस जैसे शब्दों का उपयोग नहीं कर सकता। जब तक पौलुस सुसमाचार प्रचार कर रहा था, तब तक अन्य विश्वासी अपने आप को उसके सामने अयोग्य समझ रहे थे, अपर्याप्त समझते रहे, असमर्थ समझते रहे। वे पौलुस को ही एकमात्र प्रभावी गवाह मानते थे। परंतु एक दिन रोमी साम्राज्य ने कलीसियाओं से सुना कि पौलुस बंदी गृह में है, तो कलीसियाओं ने अनेक विश्वासियों से कहा कि पौलुस बंदी गृह में है, अब वह प्रचार नहीं कर सकता, तो क्यों ना मैं प्रचार करूं। और अनेकों ने सुसमाचार सुनाना आरंभ कर दिया। मेरे प्रियो, मुझे पूरा विश्वास है कि सैकड़ों ने ऐसा किया होगा। सैकड़ों तो क्या हजारों मनुष्य सड़क पर निकल आए और घर घर सुसमाचार सुनाने लगे। उनमें डर नहीं, परंतु वे निडर होकर प्रभु के सुसमाचार को सुना रहे थे। यही कारण है कि पौलुस कहता है, प्रभु में जो भाई हैं उनमें से अधिकांश मेरे कैद होने के कारण हियाव बांधकर परमेश्वर का वचन निधड़क सुनाने का और भी साहस करते हैं। मेरे विचार में पौलुस के बंदी हो जाने का तीसरा प्रभाव भी पड़ा, जिसका उल्लेख पौलुस ने नहीं किया है। यदि पौलुस बंदी नहीं बनाया जाता, तो उसके ये बंदी गृह के पत्र आज हमें नहीं मिलते। अर्थात आज इफिसी, फिलिपी और कुलुसी और फिलिमोन को ये पत्र नहीं प्राप्त होता। यदि वह बंदी गृह में नहीं होता, तो हमारे पास ये अनुपम पत्र भी नहीं होते। प्रभु किसी और रीति से हम तक यह वचन पहुंचाता, परंतु परमेश्वर को यही भाया। पौलुस अपने बंदी बनाए जाने के बारे में कह पाया कि यह सुसमाचार की बढ़ती के लिए हुआ था। मेरे मित्रों, पौलुस के युग में एक त्रासदी थी और आज भी है। लोग परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए डरते हैं। उस समय भी शिष्यों में भय छाया हुआ था, परंतु पौलुस कहता है कि उसके कैदी होने के कारण लोगों के अंदर में साहस उत्पन्न हुआ। वे बाहर आए और परमेश्वर के वचन की गवाही लोगों को बताने लगे। उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया। आज हम सभी कलीसिया के लोगों के लिए भी यही एक सुंदर अवसर है कि हम परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाएं। परमेश्वर चाहता है कि हर एक के पास उसका वचन पहुंचने पाए। पौलुस यहाँ पर बड़े निधड़क होकर के कहता है कि मेरे कैदी होने से सुसमाचार में कोई भी रुकावट नहीं आया है। कहने का अर्थ है कि सुसमाचार प्रचार बंद नहीं हुआ है। प्रभु हर एक तरीके से अपने लोगों को इस्तेमाल करता है। यहाँ पर भी कई ऐसे लोग थे जो परमेश्वर के वचन का प्रचार करना चाहते थे, परंतु अब तक उन्हें अवसर नहीं मिला था। मेरे मित्रों, हो सकता है कि आप में से भी जो इस वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर के वचन को प्रचार करने के लिए तैयार हैं और आपको अवसर नहीं मिला है। आज परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि आप उसके पास आइए। प्रभु आपको सामर्थ प्रदान करेगा और आप अपनी कलीसिया में बहुतायत से इस्तेमाल किए जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर को आज जवान युवक और युवतियों की आवश्यकता है। वह चाहता है कि जवान उसके पास आएं। क्या आज आप में से कोई है जो परमेश्वर की सेवा करना चाहता है, उसके वचन का प्रचार करना चाहता है, उसके लोगों को जो गंदगियों में पड़े हैं जो बुराइयों में डूबते चले जा रहे हैं, पाप में जीवन जी रहे हैं, उनको सुसमाचार बताकर प्रभु के पास लाए। यदि आप ऐसा चाहते हैं, यदि आपके मन में ऐसे लोगों के लिए बोझ है, तो आप भी प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपकी सहायता करें। आइए आप मेरे साथ प्रार्थना कीजिए और हम सब परमेश्वर से इन लोगों के लिए सहायता मांगेंगे। हमारे दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित और सामर्थ्य वचन के लिए, जिसके माध्यम से आज आपने हमें फिर से एक बार इस बात का स्मरण दिलाया है कि पौलुस के बंदी हो जाने के कारण आपने और भी विश्वासियों को तैयार किया ताकि उनके द्वारा आपके सुसमाचार का प्रचार कार्य हो सके। आज हमारे कई जवान भाई बहन आपकी सेवा के लिए तैयार हैं, वे चाहते हैं कि वे आपकी सेवा करें। हमारी प्रार्थना है कि आप उन्हें सही निर्णय लेने में मदद करें, उन्हें आप हिम्मत और सामर्थ और वचन की परिपूर्णता प्रदान करें, ताकि जब वे अपने घरों में जाते हैं, कलीसियाओं में जाते हैं, आपकी सेवकाई के लिए बाहर निकल सकें। और बहुत सारे जवान भाई बहन जो बुराइयों में, पाप में, गंदगियों में पड़े हैं, उनको सुसमाचार सुनाकर आपके प्रेम के प्रकाश को उन तक पहुंचाने पाएं। प्रभु जी, आप ऐसा करेंगे इसलिए धन्यवाद देते हैं। जिन्होंने आज अपने जीवन को आपके सेवा के लिए अर्पण किया है और वे तैयार हैं, पिता परमेश्वर आप इन सब की सहायता करें। फिर से एक बार आज हम धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। प्रार्थना आपके इकलौते बेटे, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि आज आपने अवश्य ही अपने जीवन में इस वचन के द्वारा आत्मिक आशीष प्राप्त किया है। प्रभु आप सबकी सहायता करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
वादा ये रहा, भूले भटकों को तेरी राह दिखलाऊं, अपनों के लिए तूने क्या सहा ये समझाऊं। वादा ये रहा, भूले भटकों को तेरी राह दिखलाऊं, अपनों के लिए तूने क्या सहा समझाऊं। मैं जीऊंगा तेरे लिए, जान भी दूंगा तेरे लिए, प्रभु तेरा प्यार। प्रभु तेरा नाम।